अभिमन्यु के प्रति इतनी नफरत होने के बावजूद अंजलि ने उसे बचाने का फैसला किया। अभी तक अंजलि ने अभिमन्यु का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसके मन में अभिमन्यु के लिए कोई भावनाएं नहीं थी। लेकिन पिछली बार जब अंजलि मर्चेंट फैमिली के कहने पर अभिमन्यु के सामने आई तो उसने महसूस किया कि अभिमन्यु के फेशियल फीचर्स उससे मिलती जुलती हैं और उसका बिहेवियर भी काफ़ी हद तक अंजलि के जैसा ही था। अंजलि ने अपनी तरफ से अभिमन्यु को आगाह कर दिया था कि वो पाथ से दूर रहे। अभिमन्यु ने अंजलि की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अंजलि से बात करने के बाद अभिमन्यु वापस इशिका के पास आया। इशिका कपड़े बदलने के बाद उनके कमरे को तैयार करने में लगी हुई थी। वो अभिमन्यु के आने से पहले सेंटेड कैंडल्स जला रही थी। इशिका को इतनी तैयारी करते देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो दबे पांव कमरे में आया और उसने पीछे से इशिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसके अचानक आने पर इशिका थोड़ी चौंक गई, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया। अच्छा, इसमें डरने जैसा क्या हो गया? क्या तुम हमारे बेडरूम में किसी और की उम्मीद कर रही थी मिसेज राजवंश? अभिमन्यु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। इशिका तुरंत अभिमन्यु की तरफ मुड़ी और उसने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु की गर्दन में डाल दिए। उसने अपनी नाक को अभिमन्यु की नाक से टच करते हुए कहा, किसी और की तो उम्मीद नहीं कर रही थी, पर इतनी चुपचाप कौन आता है? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी अपनी मॉम से क्या बात हुई? अंजलि का नाम सुनकर अभिमन्यु अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, वो इशिका के साथ समय बिताना चाहता था। अभिमन्यु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, किसी महान इंसान ने कहा है कि हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट स्पेस में किसी तीसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे मूड खराब हो जाता है, खासकर उस सिचुएशन में जब आपका पति आपके करीब आने के लिए काफी समय से तरस रहा हो। इशिका ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, उसने हाँ में सिर हिलाया और अभिमन्यु के होठों पर हल्के से किस कर दिया। इसके बाद इशिका अभिमन्यु से अलग होना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं मिसेज राजवंश, अभिमन्यु ने धीमी हस्की वॉइस में कहा। अभिमन्यु ने तुरंत इशिका के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया था। वो उसे हंग्रीली किस कर रहा था। उसके हाथ इशिका की पीठ पर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद इशिका अभिमन्यु से अलग हुई और गहरी सांस लेते हुए बोली, कंट्रोल मिस्टर राजवंश, आपका बेबी मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, तो आपको थोड़ा तो कॉपरेट करना ही होगा। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर इशिका की बात पर सहमति जताई और फिर उसे बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद उसने भौहें पटाकर कहा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम नॉर्मली साथ में बातें करते हुए भी सो सकते हैं, मेरे लिए ये काफी है कि तुम मेरे करीब हो। इशिका ने आंखें घुमाई और अभिमन्यु को अपने करीब खींच लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने मना नहीं किया, बस थोड़ा सॉफ्ट रहने को कहा था। बोलते हुए वो अभिमन्यु की शर्ट के बटन खोल रही थी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सहमति जताई और उसके करीब आ गया। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे में खो गए। अगली सुबह इशिका की आंख खुली तो वो अभिमन्यु की बाहों में सिमटकर सोई हुई थी। इशिका अभिमन्यु से पहले उठ गई थी। उसने उठकर अभिमन्यु की नाक पर हल्का सा किस किया। किस करने के बाद इशिका अभिमन्यु से दूर जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसे वापस अपने करीब खींच लिया। वो बंद आंखों से ही बोला, आज संडे है इशिका, क्या आज भी तुम्हारा काम करने का इरादा है? काम करने का इरादा नहीं है, पर सबको बताना है कि मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है, पार्टी की तैयारी करनी है, कितना कुछ तो है, ऐसे सोने से अपने आप सब थोड़ी ना हो जाएगा। इशिका ने जवाब दिया, तुम बस आराम करो, पृथ्वी और दिशांक मिलकर हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हारा काम कम करने के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, और तो हो कि बार बार इन्हीं चीज़ों के लिए परेशान हो रही हो। मैंने सोचा है कि मैं पार्ट से भी बात करूं और उससे ये कहूं कि तुम डिलीवरी के बाद ही उसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू करोगी, अभिमन्यु ने उठते हुए कहा। उसने ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया था। भले ही अभिमन्यु ने अंजलि के सामने कुछ जाहिर ना किया हो, लेकिन यकीन तो उसे भी बात पर नहीं था। ऊपर से वो कभी नहीं चाहता था कि इशिका पाथ के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, पर साथ ही वो इशिका को उसके किसी काम से रोकना भी नहीं चाहता था। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पिछले 1.5 महीने से उस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, अब बीच में छोड़ दिया तो सारा काम वापस से करना पड़ेगा, मुझे बस 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं खुद ज्यादा वर्कलोड नहीं लूंगी। ठीक है, फिर हम आज डॉक्टर के पास भी चलेंगे, सारे रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु और इशिका दोनों ही बिस्तर से उठ चुके थे। तैयार होने के बाद वे मेन विला में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे, जहां बाकी का परिवार मौजूद था, पार्थ भी वहीं पर था। इशिका और अभिमन्यु को एक साथ देखकर वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ऊपर से उन दोनों के ही चेहरे काफी फ्रेश लग रहे थे। मुझे लगा तुम लोग नाश्ता भी वहीं पर मंगवाने वाले हो, वसुधा ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। कितना अच्छा है ना, आज संडे है और तुम दोनों आराम से साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। दादी, आप भी कभी कभी टीनेजर बनकर हमें परेशान करने लग जाती हो, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर इशिका के लिए कुर्सी खींची। अभिमन्यु भी इशिका के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया था। पार्थ की नजरें उन पर टिकी हुई थी। वो इशिका और अभिमन्यु की हर एक हरकत को गौर से देख रहा था। अभिमन्यु ने टेबल के नीचे से इशिका का हाथ पकड़ा था। उन्हें इस तरह टीनेजर की तरह रोमांस करते देखकर पार्थ ने आंखें घुमाई और मन ही मन कहा, ये इतना चीजी बिहेव क्यों कर रहे हैं, कौन सी इनकी कल ही शादी हुई है। आई मीन ग्रो अप यार, तुम राजवंश एम्पायर के सीईओ हो और अपनी वाइफ का टेबल के नीचे हाथ पकड़कर बैठे हुए हो। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ है, सबके सामने भी हाथ पकड़ सकते हो। लेकिन नहीं, पता नहीं लोगों को ये सब करने में क्या खुशी मिलती है। पार्थ मन ही मन गुस्सा निकाल रहा था, पर सच तो ये था कि उसे ऐशिका और अभिमन्यु का रिश्ता देखकर जलन हो रही थी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अभिमन्यु ने उन सब की तरफ देखकर कहा, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली मैंने ऐशिका की कंपनी को पब्लिक करने का फैसला लिया है। ऐशिका कब से इसके लिए कोशिश कर रही थी, पर कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। नेक्स्ट वीक पार्टी के जरिए हम ये अनाउंस करने वाले हैं कि ऐशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली ऐशिका की काबिलियत सबके सामने आने वाली है, राधिका ने खुश होकर कहा। अभिमन्यु की इस अनाउंसमेंट से सभी लोग खुश थे। तभी पार्थ ने कहा, काफी अच्छा डिसीजन दिया है तुमने और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि ऐशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई बताने के साथ साथ लोगों को ये भी बता दो कि डॉक्टर अनामिका भी वही है। ऐशिका के डॉक्टर अनामिका होने का सच अभी वसुधा और राधिका जानती नहीं थी। जब उन्होंने पार्थ के मुंह से ये सब सुना तो वे हैरानी से ऐशिका की तरफ देखने लगी। ऐशिका उन पर पूरा यकीन कर सकती थी और अब उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो उसका बुरा चाहता हो। ऐशिका ने अब सच को छुपाना सही नहीं समझा। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मेरा रिसर्च एरिया मेडिसिन और न्यू एनर्जी है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में लोगों को पता चले, इसलिए मैंने न्यू एनर्जी रिसर्च के लिए अपना नाम डॉक्टर मर्चेंट तो मेडिसिन एरिया में डॉक्टर अनामिका रखा था। लीगल डॉक्यूमेंट ऐशिका सिंघानिया के नाम से ही है, पर लोगों के लिए मैं डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर अनामिका हूँ। सबको लगता है ये दो अलग शख्स हैं। लेकिन तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब वो नायरा सारा क्रेडिट लेना चाहती थी? अब तो पता नहीं अपने आप ही रातों रात कहाँ गायब हो गई, वसुधा ने हैरानी जताते हुए कहा। जब पार्थ यहाँ पर आया था और शेयर्स का बंटवारा हुआ था, तब नायरा सिर्फ नकुल से बात करके वहाँ से गई थी। वो कहाँ थी इस बारे में कोई नहीं जानता था।
राधिका को ऐशिका की काबिलियत पर कोई डाउट नहीं था, आखिरकार वो मर्चेंट फैमिली का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थी। अगर उसमें और भी इस तरह की कोई काबिलियत निकलती तो भी उसे हैरानी नहीं होती। तुम्हें मुझे तो बताई देनी चाहिए थी, राधिका ने ऐशिका की तरफ देखकर कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए ऐशिका के गाल पर हाथ रखा और आगे बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू ऐशिका। ऐशिका की डॉक्टर अनामिका होने की बात सुनकर बातचीत का रुख थोड़ा बदल गया था, लेकिन अभिमन्यु पार्थ को घूरते हुए देख रहा था। अभिमन्यु ने हल्के सख्त अंदाज में कहा, नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, ऐशिका प्रेग्नेंट है। अगर लोगों को दोनों सच्चाई का एक साथ पता चला तो उसके पास प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस की भरमार लग जाएगी, ऐसे में वो खुद को टाइम नहीं दे पाएगी। मैनेजर हायर कर लेना, मुझे यही लगता है कि यही सही वक्त है ऐशिका की डॉक्टर अनामिका होने का सच बाहर निकालने का। देखो, मेरा भी प्रोजेक्ट कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा, मैं तो उसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर अनामिका को ही दूंगा। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर डॉक्टर अनामिका है कौन, पार्थ ने सिर हिलाकर कहा। बेशक तुम ऐशिका के काम को उसका क्रेडिट जरूर दोगे, लेकिन इसके लिए ये सबको बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर अनामिका के नाम के पीछे कौन छुपा हुआ है, अभिमन्यु ने पार्थ से बहस करते हुए कहा। अभिमन्यु इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। ऐशिका उनकी बातें गौर से सुन रही थी। वसुधा और राधिका भी इस बारे में विचार कर रही थी। राधिका ने पार्थ की बात पर सहमति जताते हुए कहा, मुझे पार्थ की बात सही लग रही है, डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर मर्चेंट दोनों के बारे में ही सब जानना चाहते हैं। बार बार क्यों किसी चीज़ की रिवील करने की पार्टी रखना, एक साथ ही सब बता देते हैं। चलो, कोई तो मेरी बात पर सहमत हुआ, तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, तुम सोच लो इस बारे में क्या करना है, पार्थ ने एडवाइस देते हुए कहा। अभिमन्यु अभी भी इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसने ज्यादा बहस भी नहीं की। वहीं अंजलि उसी वक्त अभिमन्यु से बात करने आ रही थी। उसने पार्थ की बातें सुनी तो वो मन ही मन बोली, ये लड़की डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर अनामिका है, यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर दिया। वही डॉक्टर अनामिका जिससे सभी अपनी रिसर्च करवाना चाहते हैं, नई नई तरह की मेडिसिन बनाना चाहते हैं, जिसकी बनाई हर मेडिसिन सक्सेसफुल है, वो ये ऐशिका है। इस बारे में किसने सोचा होगा, पर मैं क्यों हैरान हो रही हूँ, ये राधिका मर्चेंट की बेटी है, मर्चेंट फैमिली ने इसके ऊपर जरूर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी वे अभिमन्यु और ऐशिका के पीछे पड़े हुए थे। पर पार्थ का समझ नहीं आ रहा है, वो ऐशिका की पहचान बाहर लाने के पीछे पड़ा है, इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है। अंजलि ने उनकी बातें सुनी जरूर थी, लेकिन आधी अधूरी, उसे नहीं पता था कि ऐशिका पार्थ के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वहीं पार्थ का नाश्ता हो जाने की वजह से वो वहां से उठ गया था। बाहर आते वक्त उसकी नज़र अंजलि चौहान पर पड़ी। पार्थ ने उसे देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी और बिल्कुल धीमी आवाज में उसके पास आकर कहा, यही सोच रही है ना कि इसमें मेरा क्या फायदा है, आपको दिखता नहीं कि आपका बेटा ऐशिका के प्यार में इतना पागल हो गया है कि कॉलेज स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मुझे सीधे किसी को घायल करने में मजा नहीं आता, इसलिए उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे नुकसान पहुंचाता हूं। सोचो ऐशिका को कुछ हो गया तो पूरी राजवंश फैमिली पागल हो जाएगी, खासकर आपका बेटा, वैसे उन्होंने आपको बताया नहीं होगा, तो ये खुशखबरी मैं दे देता हूँ कि आप दादी बनने वाली हैं। एक साथ इतने लोगों की बर्बादी देखने के लिए यहीं पर रुक जाइए मिस चौहान, मेरा मजा दुगना हो जाएगा। पार्थ के दिल में अभिमन्यु और अंजलि दोनों के लिए ही नफरत थी। ये नफरत किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने उसके दिल में भरी थी। वो अपने प्लान जानबूझकर अंजलि को बताता ताकि वो तड़प उठे और कुछ कर भी नहीं पाए। अब अंजलि को अब पार्थ का प्लान भी समझ आ गया था। मैं अभिमन्यु को सब बता दूंगी, अंजलि ने गुस्से में सख्त आवाज में कहा। चलिए फिर अभी ट्राई करके देख लीजिए, वैसे भी मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक अच्छा सा ड्रामा देखूं, पार्थ ने भौंहें चढ़ाकर ईविल स्माइल के साथ कहा। पार्थ ने अपनी तरफ से चिंगारी लगा दी थी, अब बस धमाका होना बाकी था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। बाकी वो अपने बड़े प्लान के साथ तो पहले से ही तैयार था। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, पर डिसअपॉइंटमेंट मत हो, सीजन 2 भी आएगा। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।